समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
हेलो, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका। Priyanka, we still have a week's time for the festival of Holi, but if we talk about the Holi in Braj, it is the most famous Holi which is celebrated for 10 days continuously. The people who belong to Vrindavan, Mathura and Gokul celebrate this with great joy and enthusiasm, as there is a reason behind celebrating the Holi festival in these cities, because this is associated with Lord Krishna, who is supposed to have grown up in these, in this area, in this region.
बिल्कुल, और ब्रज की होली तो देखा देश में ही नहीं विदेशों में भी इतनी लोकप्रिय है और विदेशों से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और जैसा हमारा देश है कि विविधताओं से भरा हुआ है, हर त्योहार हमारे यहाँ इतना रंगीला होता है और भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता की पहचान इन्हीं त्योहारों से है। ब्रज में बरसाने की लठमार होली देश दुनिया में चर्चित है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी होली मनाने का अंदाज अलग अलग है।
राइट, सो प्लीज डू मेक अ विजिट टू दिस रीजन विच इज द मोस्ट वाइब्रेंट इन ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल ऑफ कलर्स इफ यू कैन टेक आउट सम टाइम। And right now, we are here with a fresh new episode of Parikrama, and let's give you the news headlines at this hour first. 3-day Startup Mahakumbh begins at Bharat Mandapam in New Delhi, aims to connect startups with inventors, including venture capitalists, investors, and potential corporate partners.
वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल में चुनावी रैली की।
Supreme Court rejects Delhi ex-minister Satyendra Jain's bail in a money laundering case, asks him to surrender immediately.
Vladimir Putin ne record 5vi baar Rus ke rashtrapati pad ka chunav jeeta.
And Met Department forecasts rain and snowfall in Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Yes, listeners, and now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about the Startup Mahakumbh, which is going on at Bharat Mandapam.
जी हाँ, और हम स्टार्टअप महाकुंभ की बात करें, आपको याद है स्टार्टअप ने एक नया बहुत बड़ा एक बूम लिया था 2016 में, जब प्रधानमंत्री ने इसकी बात की थी और उन्होंने इस मंत्र के साथ इसकी शुरुआत की थी कि जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर्स बनिए। आप नौकरी ढूंढिए मत, नौकरियां दीजिए। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमारे देश में स्टार्टअप ने एक क्रांति का रूप लिया था और 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। ये कार्यक्रम 20 मार्च तक चलेगा और इस आयोजन में विभिन्न स्टार्टअप्स के अलग अलग मंडप लगाए गए हैं। इनमें एआई, एग्रोटेक, डीप टेक, क्लाइमेट है और गेमिंग का है, ई स्पोर्ट्स का है, फिनटेक है, कई विशेष पवेलियन है। और इस महाकुंभ का उद्देश्य जो है वो है पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना।
Yes, Priyanka, it is a celebration of innovation and collaboration. The Startup Mahakumbh will be a first of its kind event in terms of vision and magnitude, which is scheduled from 18th of March till the 20th of March at the iconic Bharat Mandapam in New Delhi. The event is expected to have participation from more than 1,000 high potential startups from India and the globe, with key global and Indian stakeholders such as unicorn startups, global and domestic venture capitalists, corporates and industry leaders also participating and coming together for a transformative journey. The government aims to improve India's global ranking in terms of innovation and hopes the Startup Mahakumbh will provide a boost in this regard. Startup Mahakumbh is expected to attract thousands of startups and investors across 10 key focus areas: artificial intelligence and software as a service, agri-tech, business-to-business and manufacturing, biotech and pharmaceuticals, climate tech, deep tech, direct to consumer, gaming and e-sports, you just mentioned about it, fintech and incubators and accelerators.
बिल्कुल, और स्टार्टअप्स में अगर हम आपको बताएं, स्टार्टअप में एक दो नहीं बल्कि कई खूबियां होती हैं और जैसे एक खूबी अगर हम आपको बताएं, तमाम स्टार्टअप्स में खास बात यह होती है कि वे किसी न किसी बड़ी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, और एक स्टार्टअप का पहला फोकस ये होता है कि मार्केट पर कैसे कब्जा किया जाए। जैसे कई हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, और स्टार्टअप की एक खूबी ये भी होती है कि वे तेजी से एक बहुत बड़ा मार्केट आप तक मार्केट क्रिएट करना चाहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे और अपने आइडिया लोगों तक पहुंचाए। और आज जैसे शुरू हो रहा है और भारत मंडपम में ये महाकुंभ, तो इस सिलसिले में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र का देश है और नए स्टार्टअप की इस सूची में प्रतिदिन बड़ी संख्या में वृद्धि हो रही है। इस स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से अधिक स्टार्टअप, हजारों निवेशक, 30,000 भावी उद्यमी और विश्व स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं।
यस प्रियंका, एंड विद द सेंट्रल थीम भारत इनोवेट, द इवेंट विल ऑल्सो फीचर मेंटरशिप क्लिनिक्स, पिच कॉम्पिटिशन्स एंड अ मल्टी ट्रैक कॉन्फ्रेंस फीचरिंग लीडरशिप टॉक्स, पैनल डिस्कशंस, वर्कशॉप्स एंड अ होस्ट ऑफ एक्साइटिंग एक्टिविटीज फॉर स्टार्टअप्स एज वेल एज फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। The event will also host a Future Entrepreneurs Day on the 20th of March. And of course, the tagline is Bharat Innovates, which encapsulates our commitment to showcasing innovations from every corner of Bharat, made in India and built for the world, emphasizing the breadth and depth of innovative ideas emerging from across the nation. We aim to celebrate and foster the spirit of creativity and ingenuity within India while embracing a global perspective.
बिल्कुल, और आज के वक्त में हर तरफ स्टार्टअप की बातें सुनने को मिलती हैं। कभी किसी को फंडिंग मिलने की खबर आती है तो कभी किसी की सक्सेस स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। और आपको पता है कि सरकार ने भी स्टार्टअप्स की मदद के लिए स्टार्टअप इंडिया नाम से वेबसाइट शुरू की है। ये एक योजना है, पहल है, जिसमें कई स्टार्टअप्स को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं, उनको इस योजना के तहत मदद मिलती है।
Yes, there will be 10 thematic pavilions focused on industries, and the event is anticipated to draw a substantial number of visitors comprising registered delegates as well as other professionals eager to explore and collaborate with India. The idea is to facilitate, promote. This event showcases the fact that our startup ecosystem has become one of the largest in the world. Normally, listed and unicorns get a lot of focus, but here, even a normal startup will get access to several resources. Startup Mahakumbh is a celebration of all the startups who are innovating on behalf of India. We are delighted to provide them with the platform to engage, network, and showcase the work they have done to innovate for Bharat. So this entire 3 days of Startup Mahakumbh have been very well curated to ensure that future entrepreneurs are benefited, and in fact it may become an annual affair, as the secretary of the DPIIT had mentioned it.
और मतलब जो नए लोग हैं, जो एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ा मंच मिलेगा इस महाकुंभ के जरिए।
In fact, Priyanka, there's another thing which is to be noted. The event will also host top women leaders to highlight their pivotal role within the startup ecosystem. At Startup Mahakumbh, we are not just showcasing startups, we are enabling an ecosystem where women lead with resilience and creativity, driving forward the global narrative of Indian entrepreneurship. So we can say that this mega event is a major step towards promoting Indian small business holders as well.
और अब समय है अपने संवाददाताओं से जुड़ने का। आपने जैसे शुरुआत में ही होली का रंग बिखेर दिया था सभी पे, अपने श्रोताओं पर और मुझ पर भी, तो आज जो हमारे संवाददाताओं से हम बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने भी होली का रंग डाला है अपनी इस रिपोर्ट में। और पहले इन पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं कि जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और दफ्र के शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की, कुछ तबले खड़के रंग भरे, कुछ ऐश के दम मुंह चंग भरे, कुछ घुंघरू ताल झनकते हो तब देख बहारें होली की। जी हां, होली का त्यौहार करीब आ रहा है। देश में अन्य जगहों पर होली भले ही 25 या 26 तारीख को मनाई जाए, लेकिन ब्रज में तो रंगोत्सव शुरू हो चुका है और आज लठमार होली खेली जा रही है। इस पर एक खास रिपोर्ट है हमारे संवाददाता सुशील तिवारी की, आइए सुनते हैं।
मथुरा में होली का 45 दिनों का उत्सव चल रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहां होली का रोज आनंद ले रहे हैं। श्रद्धालु अबीर गुलाल से सराबोर हैं। आज लठमार होली मनाई जा रही है, जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि बरसाना इलाके को 6 जोन और 15 सेक्टरों में बांटकर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि बम निरोधक दस्ते, अग्निशमन दस्ते, श्वान दस्ते और सादी वर्दी में खुफिया पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। मथुरा स्थित राधा जी के गांव बरसाना में श्री जी मंदिर परिसर में लड्डू होली के साथ साथ रंगोत्सव चल रहा है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और जिला प्रशासन ने जगह जगह स्वागत द्वार बनाए हैं। मुख्य आयोजन राधा बिहारी इंटर कॉलेज में बने मंच पर हो रहा है, जहां कलाकार मस्ती भरे गीत और रसिया प्रस्तुत कर रहे हैं और श्रद्धालु भरपूर आनंद ले रहे हैं। आज विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली जा रही है। राधा रानी रूपी गोपियों ने आज नंदगांव के हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाई। मान्यता है कि बरसाने की महिलाओं की लाठी जिसके सर पर छू जाए वो सौभाग्यशाली माना जाता है। होली पर परंपरा, आस्था और भक्ति के रंग में पूरा ब्रज डूबा हुआ है।
हम दिल्ली से आए हैं होली मनाने, हर वर्ष आते हैं यहाँ पर होली मनाने। यहाँ की होली बिल्कुल ही अलग होती है, बिल्कुल ही स्वच्छ रंग, बिल्कुल ही साफ रंग, फूलों से होली, ऐसी होली आपको कहीं पर भी देखने में नहीं मिलेगी।
यूं तो होली पूरे देश में खेली जाती है, लेकिन ब्रज की होली का विशेष महत्व होता है। देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में जहां रंग गुलाल और पानी से होली खेली जाती है, वहीं ब्रज में रंग गुलाल के अलावा लठमार, छड़ी मार, लड्डू और फूलों वाली होली मनाई जाती है। ब्रज की होली में लठमार होली सबसे खास होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ लठमार होली खेली थी। इसके बाद से ही यहां लठमार होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। ब्रज में होली को होरा कहा जाता है। परिक्रमा के लिए मथुरा से मोहम्मद उमर कुरैशी के साथ सुशील चंद्र तिवारी।
उड़ाए वह अबीर जी भर जो बने सरस जलद जैसा, रहे जिसमें हित की रंगत, लगाए हम गुलाल ऐसा। जी हाँ, ऐसा रंग लगाए जो सभी को भाए। और जैसा इन्होंने बताया कि फूलों से भी होली खेली जाती है, और कितनी अच्छी लगती होगी। नेचुरल कलर्स आजकल यूज करते हैं हम होली खेलने के लिए। फूलों की होली से आपको बता दें कि हमारी जो अगली रिपोर्ट है वो फूलों से जुड़ी हुई है। दार्जिलिंग में पहाड़ जो है उसमें फूलों की खेती हो रही है, और फूल उत्पादन से स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ रही है। और हम जानते हैं कि फूल प्रकृति का अनमोल उपहार है, जो मंदिर से लेकर घर तक की शोभा बढ़ाते हैं। तो इस पर क्या रिपोर्ट है हमारे संवाददाता अशोक चौरसिया की, आइए सुनते हैं।
हिमालय की गोद में बसा पश्चिम बंगाल का सुंदर रमणीय पहाड़ी क्षेत्र दार्जिलिंग का प्राकृतिक सौंदर्य बसंत ऋतु में फूलों से और भी मनमोहक हो जाता है तथा पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। इस पहाड़ी क्षेत्र के गांवों तक शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके आंगन में विभिन्न प्रजाति के फूल घर की शोभा न बढ़ाते हों। गत कुछ वर्षों से दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र में फूलों की खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है। फूलों की खेती से उनका आय भी बढ़ रहा है। राज्य व केंद्र सरकार के संबंधित कृषि विभाग भी फूलों की खेती को संवर्धित करने तथा किसानों को आधुनिक तकनीक व बाजार उपलब्ध कराने में हर संभव मदद कर रहे हैं। बागवानी से संबंधित यहां की कई गैर सरकारी संस्थाएं भी फूल की खेती, उत्पादन व फूल व्यापार को संवर्धित करने हेतु विशेष रूप से जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में जगह जगह बड़े स्तर पर पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन करती हैं। मार्च के शुरू में यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मिरिक में हिमालयन पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस पुष्प प्रदर्शनी में करीब 50 से अधिक प्रजाति के फूलों को प्रदर्शित किया गया। यहाँ के फूल विशेषकर ऑर्किड व ग्लैडियस विश्व प्रसिद्ध हैं। ऑर्किड के ही 10 से अधिक प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा एजिलिया, जर्बेरिया, हेमंतास, पपीटियस, हेलिकोनिया, एस्ट्रोबेरिया, कार्मिशन, फ्रीजिया, रिवन क्या कैक्टस, गेन्ना आदि भी यहाँ के प्रसिद्ध फूलों में शुमार हैं। इनके अलावा चांप, गुरास, लाली, गोदावरी, घंटी फूलों का स्थान भी उल्लेखनीय है। हिमालयन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में कार्शियंग में एक बड़ा पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वैसे भी कार्शियंग को ऑर्किड की भूमि के नाम से जाना जाता है। 3 दिन तक चले इस प्रदर्शनी में कोलकाता, दिल्ली व मुंबई के पुष्प व्यापारियों की भी सहभागिता रही। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल सरकार के बागवानी विभाग व यहाँ के फूल खेती संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में गत जनवरी के अंत में कालिम्पोंग में भी एक बड़ा पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कृषक, फूल विक्रेता व पर्यटक शामिल रहे। सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में 40वां वार्षिक उत्तर बंगाल पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन सिलीगुड़ी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा किया गया। इसमें 90 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, जहां विभिन्न प्रजाति के फूलों को प्रदर्शित किया गया था। आज उत्तर बंगाल बागवानी तथा पुष्प उद्यान के गढ़ के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें दार्जिलिंग हिमालय क्षेत्र का बड़ा योगदान है।
And Priyanka, for the first time in Ladakh, the Higher Education Department has introduced skill courses in different colleges of the region. It is being imparted in collaboration with the 6 sectors of skill councils, University of Ladakh and Ladakh Skills Development Mission. Our lay correspondent Yangchang Dolma has filed more on this.
To develop a better skilling ecosystem in Ladakh, the Higher Education Department has made an intervention indeed through its initiative, Education and Skill Force with Partnership. Under this banner, 10 different skill courses are being imparted to the students since 2023 from August-September 1st semester. For these courses, 15 skill centers have already been set up in 15 colleges campus. These courses are being provided to the student as part of the curriculum of the college and based on credit system. Since it is made a certified course, the enrollment of the student has met encouraging with 600 students in the first semester availing the courses. Introduction of skill courses in the colleges have started with the signing of Memorandum of Understanding between University of Ladakh, 6 Sector Skills Council and Ladakh Skill Development Mission on 10th of December in 2022. To strengthen the Skill Center College, Ladakh Skill Development Mission has set up recently 4 skill workshop cum laboratories at Eliezer Jordan Memorial College in Leh City. This college is providing courses in mushroom culture, high altitude trekking guide, graphic designer and food processing. Other colleges which are located in other subdivision of Ladakh also offering service to the youth who are not enrolled in the college. Yangchan Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
अब इस सेक्शन में, कॉरेस्पोंडेंट सेक्शन में हमारी आखिरी रिपोर्ट फल से जुड़ी है। आज हम फल फूल की बात ही कर रहे हैं,
कुछ फेस्टिवल जैसा लग रहा है
और आज जो पूरा सेक्शन है ना, पूरा फेस्टिव सेक्शन लग रहा है। बहरहाल, मेघालय के प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी फल की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य का परिवहन, कृषि और किसान कल्याण विभाग संयुक्त रूप से 5 से 13 अप्रैल के बीच स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन करेगा। इस पर रिपोर्ट है हमारे संवाददाता अमन की, आइए सुनते हैं।
मेघालय के प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी फल की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य का परिवहन, कृषि और किसान कल्याण विभाग साझा रूप से 5 से 13 अप्रैल के बीच स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन करेगा। स्ट्रॉबेरी एक मीठा और रसीला फल है जो अपने विशेष स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। कार्यक्रम के दौरान किसानों को स्ट्रॉबेरी की बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य के बागवानी विभाग ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं। राज्य में स्ट्रॉबेरी की फसल रोपण का मौसम शुरू हो चुका है। यह महोत्सव राज्य के सिंटंग तथा नोहरौन में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। पारितोष दीक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अमन यादव।
And now we will take you on a tour around India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On the 18th of March 1919, the British government passed the Rowlatt Act, which gave powers to the police to arrest any person without any reason. The formal name of this legislation was Anarchy and Revolutionary Crimes Act of 1919.
The Act gave immense power to the colonial administration. Anyone suspected of nationalistic activities could be arrested for 2 years without a trial. The freedom fighters called the act the Black Act, and it triggered outrage across the nation. Gandhiji called for Satyagraha against the Rowlatt Act on the 6th of April 1919. The British administration came down heavily upon the people, and on the 13th of April 1919, Jallianwala Bagh massacre took place in Amritsar.
The violence and bloodshed sparked by the Rowlatt Act drew Mahatma Gandhi into the vortex of the freedom movement, and he launched the non-cooperation movement in 1920, opening a new chapter in India's fight for freedom.
You also remember Indian National Army's Colonel Gurbaksh Singh Dhillon, who was born on the 18th of March 1914 near Amritsar, Punjab. Dhillon, along with other soldiers of the Indian National Army, General Shahnawaz Khan and Colonel Prem Kumar Sehgal, was charged with treason and waging war against the British Empire.
Dhillon joined the INA after the fall of Singapore to the Japanese in February 1942. When Netaji Subhash Chandra Bose took command of Azad Hind Fauj in 1944, Dhillon was made the commander of the Nehru Brigade. He was assigned the task of holding the Irrawaddy River in Burma. On 12th of February 1945, the INA defences along Irrawaddy were bombed by the Allied aircraft. Under severe bombardment and assault, the INA nevertheless managed to hold Irrawaddy. The other assault by the British opposite Nongju using motorboats was also repelled by the INA. However, INA could not hold for long in the face of sustained assault, and Dhillon had to eventually withdraw to Paghan.
Dhillon again was given the task of checking the Allied forces' advance to Chowk Padang. Dhillon and his soldiers offered the strongest resistance against the British attacks. However, in April 1945, under furious assault from the British tanks and armoured vehicles, INA had to withdraw to Maghve.
As the INA trials of Dhillon, Shahnawaz and Prem Sehgal started, the naval ratings mutiny broke out. The armed forces, which the British used to enforce their authority over India, turned against them. On January the 4th, 1946, Dhillon was released along with Shahnawaz and Prem Sehgal after a long trial. Post his release, Gurbaksh Singh Dhillon spent his life at Shivpuri in Madhya Pradesh, where he passed away peacefully on February the 6th, 2006. We salute the great nationalist.
Bhet tumhari ye jeevan ho, mar mitne ke liye magan ho.
We also remember freedom fighter Kunji Lal Dubey, who was born on the 18th of March 1896 in the Narsinghpur district of Madhya Pradesh. Kunji Lal was influenced by freedom fighters Madan Mohan Malviya and N.C. Kelkar when he was studying law in Allahabad University.
Kunji Lal became a member of All India Congress Committee in 1937 and was the secretary of the reception committee during the 1939 Tripuri session of the Congress. In 1941, he was selected for the Satyagraha by Mahatma Gandhi, but was detained by the police and was sentenced to nearly 1 year of imprisonment. On his release in 1942, he participated in the Quit India movement and was jailed again, this time for a period of 2 years. In 1946, he was elected from Jabalpur in the assembly elections.
Post-independence, Kunji Lal Dubey was actively involved in politics and was selected to be the first speaker of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh. And in the business news today, benchmark indices ended on a positive note with Nifty above 22,050.
The 30 shares Sensex rose 105 points or 0.14% to close at 22,748, and NSE Nifty jumped 32 points or 0.15% to finish at 22,056. In the forex market, the Indian rupee today ended at 82 rupees and 91 paise against the US dollar. In the global oil market intraday trade, Brent crude was trading at $86.21 per barrel when reports last came in.
और अब खेल जगत की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स ने बेंगलोर ने महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग का खिताब जीत लिया है। रॉयल चैलेंजर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 114 रन का लक्ष्य 19 ओवर 3 गेंद में 2 विकेट पर 115 रन बनाकर हासिल कर लिया। और अब जानी मानी हस्तियों को याद करते हैं। शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका सिद्धेश्वरी देवी का आज निधन हुआ था। उन्हें ठुमरी गायन की साम्राज्ञी कहा जाता था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन संगीत के प्रति रुझान ने उनके लिए रास्ते भी बनाए और उन्हें मंजिल तक भी पहुंचाया। एक बार मुंबई में एक संगीत सम्मेलन में, जिसमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और फैयाज खान ने भी शिरकत की थी, सिद्धेश्वरी देवी ने उसमें ठुमरी प्रस्तुत की, जिसके बोल थे, काहे को डारे रे गुलाल ब्रजलाल कन्हाई। और उसके बाद आफ्ताबे मौसकी फैयाज खान ने गाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तुति, इस संगीत के बाद अब और किसी के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो आइए सिद्धेश्वरी देवी के गायन की ये वानगी सुनते हैं।
जावो,
the next personality is Rajkumari Dubey, a melodious maestro, an iconic playback singer whose mesmerizing vocals and extraordinary contributions continue to resonate in the hearts of music enthusiasts. Born in 1924 in British India, Rajkumari's musical journey defied all odds, captivating audiences with her natural talent and unmatched passion. From a tender age, Rajkumari displayed an innate gift for singing, despite never receiving formal training in the art. Recognizing her immense potential, she was offered a dual role as an actress and a singer in the production in a production company, and later parting ways with the acting part, she embarked on a successful voyage as a playback singer, lending her enchanting voice to actresses like Ratnamala and Shobhna Samart in those times.
और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक शशि कपूर की आज जयंती है। अपने सदाबहार अभिनय से लगभग 4 दशक तक उन्होंने हिंदी सिने प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया और 1965 में शशि कपूर के करियर का अहम साल रहा। उसी साल उनकी जब जब फूल खिले हैं प्रदर्शित हुई। बेहतरीन गीत संगीत और अभिनय से सजे फिल्म की सफलता ने शशि कपूर को स्टार के रूप में स्थापित कर दिया।
We have a dialogue in his voice.
किसी भले आदमी ने कहा है, ये मत सोचो कि देश तुम्हें क्या देता है, सोचो ये कि तुम देश को क्या दे सकते हो। और जब तक हम सब ये नहीं सोचते, हमारा कुछ नहीं रह सकता।
This was from the famous movie Roti Kapda Aur Makan, and of course he won a National Film Award for his movie New Delhi Times, and also he was honored with Padma Bhushan in 2011 and received the Dada Saheb Phalke Award conferred upon him for his contribution to Indian cinema. And we have a song also from his popular movie.
Vada karo nahi chhodoge tum mera जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ, वादा करो नहीं छोड़ो।
और जानी मानी गायिका अलीशा चन्नॉय का भी आज जन्मदिन है। कई फिल्मी गीतों को उन्होंने आवाज दी और उनका जो मेड इन इंडिया एल्बम था वो भी काफी लोकप्रिय हुआ। जी हाँ, मेड इन इंडिया ये का ये गीत था और काफी लोकप्रिय हुआ था। और इसी के साथ अब समय कह रहा है आपसे विदा ली जाए, तो प्रियंका अरोड़ा और अनुजा कुमार को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की।
नमस्कार।